ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। छत्तीसगढ़ में आज दो अलग अलग घटनाओं में 30 माओवादी मारे गए। माओवादियों के साथ मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद हो गया। बस्तर संभाग के बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के जंगलों में दो माओवादी की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर थी। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। तलाशी अभियान अब भी जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक अन्य कार्रवाई में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी में 4 माओवादी मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ सख्ती से आगे बढ़ रही है। श्री शाह ने कहा कि सरकार उन उग्रवादियों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपना रही है जो तमाम सुविधाएं दिए जाने के बावजूद समर्पण नहीं कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। गृह मंत्री ने कहा कि अगले साल 31 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। सरकार ने T-90 टैंकों, वरुणास्त्र टॉर्पीडो और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए 1,350 हॉर्स पावर इंजन की खरीद को स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद की बैठक में ये मंजूरी दी गई। इस खरीद पर 54,000 करोड़ रूपए से अधिक खर्च होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय सेना के लिए T-90 टैंकों के लिए वर्तमान 1000 हॉर्स पावर इंजन को उन्नत करने के लिए 1,350 हॉर्स पावर इंजन की खरीद की जाएगी। भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद को भी परिषद ने मंजूरी दी है। ये प्रणाली युद्ध के पूरे परिदृश्य को बदल सकती है और क्षमता को तेजी से बढ़ा सकती है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के बारे में डीएमके और कुछ अन्य विपक्षी सांसदों के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर डीएमके सांसदों का विरोध जारी रहने के कारण इसे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। तीसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने डीएमके सांसदों के विरोध के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उसने वर्ष 2014 से उनके लिए कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली में श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि को लागू किया है और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। सरकार ने 5 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़ी अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1,100 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। इस वर्ष पंजीकरण का प्रमाणीकरण आधार कार्ड से होगा। कुल पंजीकरण में से 60% पंजीकरण ऑनलाइन होंगे और 40% ऑफलाइन किए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में इसकी घोषणा की। श्री राम सुतार को पद्म भूषण से अलंकृत किया जा चुका है। उन्होंने 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया था। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का शुभारंभ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया। श्री मांडविया ने देश भर में खेलों के विकास को बढ़ावा देने में खेलो इंडिया पहल को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के अंतर्गत देश में खेलों के बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।